आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है फिजिक्स। और आपको बता दें कि पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ लाइन पे बनी हुई है मिसेज रीतिका आनंद जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डियर चिल्ड्रन नमस्कार, और हम रेडी हैं बात करने के लिए आपके चैप्टर 7 मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में। इससे पहले कि हम बात करें कि किस तरह से हम समझेंगे मोशन ऑफ रिजिड बॉडी को, उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये रिजिड बॉडी है क्या। व्हाट is a rigid body. So children, till now you have learnt about motion of a single object which is usually taken as a point mass. So jab bhi humne mechanics mein kuch cheezein solve ki, humne particles ko point mass ki tarah samjha, theek hai? Kabhi aapne kaha point A, point B, point X, point Y, hai na? Aise karte hai na hum. Magar jab hum असली जिंदगी में मोशन की बात करते हैं, तब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मोशन की हम बात कर रहे हैं, आई एम श्योर यू ऑल विल अग्री विद मी दैट दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स। एक छोटा सा कंकड़, एक छोटा सा पत्थर भी मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करता है अपने अंदर। तो अगर मैं एक कार की बात करूं, एक एरोप्लेन की बात करूं, या मैं किसी बड़े ऑब्जेक्ट की बात करूं, एंड इन फैक्ट व्हाट अबाउट अर्थ, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ मून, व्हाट अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट। सो व्हेन दीज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, कैन आई कंसिडर देम एज अ पॉइंट मास? इज देयर अ वे वेयर आई कैन फाइंड अ सिंपलर method to solving my equations is what we are going to talk about in this chapter. We are also going to talk about center of mass and moment of inertia. They play a lot of, it plays an important role in rotational and translational motion. Ab aap zarur sochenge ki ye translational motion or rotational motion hai kya. To bachcho, sabse pehle translational motion ki agar main baat karun, तो मोशन इन विच अ बॉडी शिफ्ट फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू अनदर पॉइंट, मतलब यदि कोई चीज सीधी सीधी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल अ बुलेट विच इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। बट वॉट इज रोटेशनल मोशन, जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में? रोटेशनल मोशन इज every particle in the body moves in a circle. Imagine ek body ke andar bahut sare particles hain aur wo sab particles ek circle mein, ek goladar mein move kar rahe hain, but about a single line, ek line ke aas paas ghoom rahe hain gol gol. That line is called the axis of rotation. And this motion is termed as rotational motion. तो आइए अब बात करते हैं एक बहुत interesting चीज की, और उसे कहते हैं हम rigid body. Why are we talking about rigid bodies? Why should we know about rigid bodies, children? The reason is that since we are going to talk about rotational motion, we should know how we are going to simplify and understand the motion of these rigid bodies. You know, in practice, when bodies interact with each other, the distances between them are very large as compared to their sizes. So their sizes can always be ignored and they may be treated like point masses. Jaise ki maine kaha, जब हम सितारों की बात करते हैं गैलेक्सी में, या हम अर्थ और मून की बात कर रहे हैं, या हम अर्थ और सन की बात कर रहे हैं, या हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, लाइक अर्थ और मून के सिस्टम में मून के साइज को कभी कभी इग्नोर कर दिया जाता है इक्वेशंस में। बट व्हेन वी हैव टू कंसिडर द रोटेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस, साइज बिकम्स इम्पॉर्टेंट। जब कोई चीज गोल मूव कर रही है, जैसे रोटेशनल मोशन, जहां हर एक पार्टिकल एक एक्सिस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, वहां पर बॉडी का साइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वी अज्यूम दैट ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ अ सिस्टम एंड ऑफ कोर्स ड्यूरिंग रोटेशन द डिस्टेंसेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रिमेन फिक्स्ड एंड सच सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ rigid body. A rigid body is one in which the separation between the constituent particles does not change with its motion. Simplify भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है, मान लो एक solid body है, कोई एक मान लो एक pebble है आपके पास, एक पत्थर है, उसके बीच में दो कोई भी पार्टिकल्स मान लो, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी. पार्टिकल ए और पार्टिकल बी के बीच का डिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा. अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा. तो उस टाइम फ्रेम में मैं उस पत्थर को रिजिड बॉडी मान सकती हूँ. तो रिजिड बॉडी क्या है? अ रिजिड बॉडी इज वन इन विच द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स does not change with its motion. ठीक है, ये बात समझ आई? आगे बढ़े. तो जैसे कि पॉइंट मास में हम किसी भी एक बड़ी सी बॉडी को एक छोटा सा पॉइंट मास मान लेते हैं, ऐसे ही रिजिड बॉडी भी एक आइडियल सिचुएशन है. हम मानते हैं कि पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बदलेगा नहीं, लेकिन हमें भी पता है sometimes the particle, the distance between particles can change when there are certain forces which are acting. But approximation ke liye ye hum maan sakte hain, jaise koi cricket ball hai ya koi ek steel ki disc hai, earth hai, moon hai, inhe hum rigid bodies maan sakte hain. To abhi tak humne kya sikha ki translational aur rotational motion mein kya fark hai. Humne ye sikha कि ट्रांसलेशनल मोशन में बहुत सारी चीजों को डिफाइन करने के लिए पॉइंट मास का सहारा लिया जाता था. अब हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो रिजिड बॉडीज के बारे में जानेंगे. रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, द सेपरेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डज नॉट चेंज विद इट्स मोशन. ये आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखेंगे. तो आपकी किताब में दो तीन सवाल हैं जो मैं आपसे जरूर बात करूंगी उनके बारे में, और मैं उसका जवाब नहीं दूंगी आपको, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर होना होगा कि उसका जवाब क्या है. सवाल ये है, अ फ्रेम इज मेड ऑफ सिक्स वुडन रॉड्स, द रॉड्स आर फर्मली अटैच्ड टू ईच अदर, कैन दिस सिस्टम बी कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी. आपके पास यदि आपकी नोटबुक है तो आप इसका आंसर यस और नो में लिख सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो रिजिड बॉडी क्यों है और रिजिड बॉडी क्यों नहीं है. आई रिपीट, फ्रेम इज मेड अप ऑफ सिक्स वुडन रॉड्स, द रॉड्स आर फर्मली अटैच्ड टू ईच अदर, कैन दिस सिस्टम बी कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी. इसका जवाब मैं आपको दे चुकी हूँ, बस सोचना है और यस और नो लिखना है. दूसरा सवाल ये है, कैन अ हीप ऑफ सैंड बी कंसिडर्ड अ रिजिड बॉडी. सोचिए, हीप ऑफ सैंड जिसमें पता नहीं कितने सारे पार्टिकल्स हैं, क्या उसे रिजिड बॉडी माना जा सकता है? अपना आंसर यस और नो में लिखिए और मन में सोच लीजिए, क्या हीप ऑफ सैंड रिजिड है या नहीं. सिमिलरली, कैन यू कंसिडर वाटर इन अ बकेट एज रिजिड बॉडी? आई एम श्योर यू नो द आंसर. वाटर इन अ बकेट कैन नॉट बी अ रिजिड बॉडी बिकॉज इट्स शेप चेंजेस एज द बकेट इज पुश्ड अराउंड. We are now ready together to move and understand a very beautiful topic, and the name of the topic is center of mass of a rigid body. बच्चों, ये टॉपिक अगर आप साइंस आगे परसू करते हैं, अगर आप फिजिक्स आगे परसू करते हैं, मैकेनिक्स आगे परसू करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा टॉपिक है जो जीवन भर आपके साथ चलेगा. और अगर आप साइंस नहीं परसू करते अपनी हायर स्टडीज में, तो भी मैं कहूंगी इसे बहुत आराम से समझिए, क्योंकि यू विल वंडर दैट आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो इतनी खूबसूरती से हैंडल्ड हैं बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास. एंड एज द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी क्लियर. बट जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगी आप समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है. नाउ लेट अस कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. बच्चों मैं आपकी किताब पेज नंबर 178 और 179 को जरूर रेफर कर रही हूँ. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि वो डायग्राम आपके पास है. वो डायग्राम अपनी आंखों के सामने रखोगे तो समझ जल्दी आएगा. तो जैसा कि मैंने कहा वी आर गोइंग टू कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स. ठीक है, हैविंग सेम मास. दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास बिल्कुल सेम है और उन्हें एक रॉड से कनेक्ट कर दिया गया है. रॉड को मान लिया कि वो वेटलेस है और मान लिया वो इनएक्सटेंसिबल है. इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसका साइज बदल नहीं सकता. तो सवाल ये है कि क्या ये एक रिजिड बॉडी है. माय आंसर विल बी यस, बिकॉज दीज टू मासेस, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस आर नॉट चेंजिंग एट ऑल. इजंट इट, इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. दोनों का डिस्टेंस फिक्स्ड है, इसीलिए आपका ये सिस्टम जो है ये एक रिजिड बॉडी माना जाता है. मान लेते हैं कि ये जो दो पार्टिकल्स हैं ये हाइट पर पड़े हैं, Z1 और Z2, एक हॉरिजॉन्टल सतह से ये एक दो हाइट्स पे पड़े हैं. आपका मास M1 है Z1 पे और आपका मास 2 है Z2 पे. सपोज दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिफॉर्म इन दैट रीजन. The force which is acting on each particle is going to be mg. Why mg? Because g is a small g, which is acceleration due to gravity, and mass, which is the mass of the particle. और हम जानते हैं force का formula क्या है. Force का formula है mass into acceleration. But क्योंकि हम force बात कर रहे हैं जो gravitation की वजह से लग रही है तो इसीलिए force का formula हो जाएगा mg. दोनों bodies पे जो टोटल फोर्स एक्ट कर रही है वो है 2mg, क्योंकि एक पर mg है दूसरे पर भी mg है. दोनों को जो यदि हम ऐड करेंगे हमारा आंसर आएगा 2mg. ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े. अब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में एक कोई पॉइंट सी ढूंढते हैं. ठीक है, वो पॉइंट सी ऐसा है जहां पर अगर, अच्छा ये एक assumption है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को. We have to find a point C in the system that if a force 2mg acts at a point located at a height z from the horizontal system, the motion of the system would be the same as with the two forces. मैं repeat कर रही हूँ, एक ऐसा point C ढूंढा जहां पे हमने assume किया कि यदि 2mg force इस पॉइंट सी पे लगती तो भी इस पूरी रिजिड बॉडी का मोशन वैसा ही होता जैसा इंडिविजुअल फोर्सेस के लगने पर हो रहा है. मतलब ये पॉइंट वन और पॉइंट टू इंडिविजुअल पॉइंट से दोनों कनेक्टेड हैं तो इसीलिए रिजिड बॉडी बन गए. दोनों पे फोर्स जो लग रहा है वो 2mg लग रहा है. लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जाए जहां पर 2mg फोर्स लगे और द मोशन, जो सिस्टम का जो मोशन है वो बिल्कुल सेम रहे इंडिविजुअल फोर्सेस की तरह, तो वो हमारा पॉइंट होगा सी. और यदि इसको इक्वेशन के टर्म में लिखना है तो आओ वो भी लिखते हैं. अगर आपको पार्टिकल वन की पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है तो क्या है वो, बताओ जल्दी. पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ. mgh, यानी मास, acceleration due to gravity and height of the object from the horizontal surface, from the earth, whatever. तो यहाँ पर जो हमने height ली है वो Z1 है. ठीक है, तो diagram में देखो figure expression 7.1 मेरे सामने है. मैं assume कर रही हूँ तुम्हारे पास भी है वो. और mgz1 है हमारी potential energy point one की. ऐसे ही पॉइंट नंबर टू की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgz2. अब इन दोनों की जो कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट c. which is 2mgz. So, इसकी वजह से हमें एक इक्वेशन मिल गई जो बहुत सुंदर इक्वेशन है, 2mgz is equal to mgz1 plus mgz2. क्यों? क्योंकि ये 2mgz जो है ये उस पॉइंट C के बारे में बात कर रहा है जो हमने सेंटर में ढूंढ लिया है कि अगर उस पर फोर्स लगे या उन दोनों पॉइंट्स पर फोर्स लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा. और mgz1 और mgz2 तो तुम लोगों को पता है क्या है, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स इंडिविजुअली. अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, 2mgz इज इक्वल टू mgz1 प्लस mgz2, इसमें m कॉमन है, m को कैंसिल आउट कर दो, g को कैंसिल आउट कर दो क्योंकि वो भी कॉमन है, तो मेरे पास क्या बच गया बच्चों, z equals z1 plus z2 divided by 2. So, which means that this point C is lying at the center in the midway between both the particles. अभी तो हमने एक ऐसा केस डिस्कस किया बच्चों जहां पे मैंने आपको कहा कि ये पॉइंट वन और पॉइंट टू दोनों का मासेस जो है वो सेम है. ऐसा मान लो कि ये दो मासेस इक्वल ना होकर अनइक्वल है, तब क्या करोगे? तब क्या ये पॉइंट मिडल में रहेगा या इसकी इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाएगी? आई एम श्योर तुम सबको लग रहा है कि यह पॉइंट शिफ्ट होगा. और बच्चों शाबाश, तुम बिल्कुल सच सोच ठीक सोच रहे हो, ये पॉइंट जरूर शिफ्ट होगा. किस साइड पे शिफ्ट होगा, आओ जरा नजर मारते हैं. सो इफ द मास ऑफ द पार्टिकल वन दैट इज m1 एंड दैट ऑफ पार्टिकल टू इज m2, एनीवे उस पॉइंट पे जाने से पहले जरा थोड़ी सी इस इक्वेशन को यदि मैं मॉडिफाई कर लूं, तो ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास यहाँ टू, देखो ये जो z इज इक्वल टू z1 प्लस z2 बाई 2 था, 2 इसलिए आया था क्योंकि मासेस सेम थे. यदि मासेस फर्क होंगे तो इस इक्वेशन में जरा सी मॉडिफिकेशन बच्चों ये आएगी कि g कैंसिल आउट हो सकता है पूरी इक्वेशन में से, लेकिन m की जगह m1 प्लस m2 आ सकता है, m की जगह m1 और m की जगह m2. तो मेरा जो पूरी इक्वेशन है वह बन गई m1 z1 plus m2 z2 divided by m1 plus m2. इस इक्वेशन पर एक स्टार मार्क कर लो, इस इक्वेशन को एक डब्बे में डाल लो, इस इक्वेशन को याद कर लो, बिकॉज दिस इक्वेशन इज गोइंग टू हेल्प यू टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एंड इट इज अ मैथमेटिकल टूल. रिमेंबर देर इज नो फिजिकल पॉइंट एज सी एम. सी एम किसी भी बॉडी में, सी एम का मतलब है सेंटर ऑफ मास, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. वो क्यों है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, जैसे जैसे हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ये बातें आपको समझ आ जाएंगी. लेकिन जो मैं आपसे चाह रही हूँ बच्चों वो ये है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो कि जिस जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा उसे हमने एक स्पेशल एग्जाम्पल माना और उसमें हमने सेंटर ऑफ मास कहीं सेंटर में लोकेट कर लिया और एक इक्वेशन आ गई हमारे पास जिसमें हमने लिखा z इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 वेयर m1 एंड m2 आर द मासेस एंड z1 एंड z2 वाज द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. लेट अस कंसीडर वन केस इन व्हिच मास ऑफ द पार्टिकल इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. और अगर तब आप इसको अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में तो मुझे पता है आप फटाफट से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि तब मैं आपको रिपीट कर रही हूँ सवाल, मास ऑफ वन पार्टिकल इज ट्वाइस दैट ऑफ द अदर. इफ देन यू हैव टू लोकेट द सी एम, व्हाट विल बी सी एम? जेड विल बी इक्वल टू एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू. नाउ इन प्लेस ऑफ एम वन you will definitely substitute m and in place of m2 you will definitely substitute 2m in the numerator as well as in the denominator. dono jagah par m1 ki jagah m, m2 ki jagah 2m substitute kare to jo hamara jawab aayega wo hoga z1 plus 2z2 divided by 3. so ये तो एक जनरल हम बातें कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को, मगर अगर एक पार्टिकल थ्री डायमेंशंस में है, मतलब हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट को डिफाइन करना है, मान लीजिए कोई एक पार्टिकल एम वन है वो स्पेस में है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? आपको मालूम है ना, एक्स वन वाई वन जेड वन कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा उसके हिसाब से। ऐसे ही मान लो कोई और मास है, मास एम टू है, तो बच्चों उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स टू वाई टू और जेड टू। अगर कोई पार्टिकल है एम थ्री तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, है ना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर मैं आपको एक ऐसा पार्टिकल सिस्टम दे दूं जहां पे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं थ्री डायमेंशंस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, और तब हमें उनकी इक्वेशंस निकालनी है, तो याद रखना ये बात अपने हमेशा बच्चों याद रखना कि यदि थ्री एक्सिस गिवन है तो आपको तीन ही डायमेंशंस में सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। अगर सवाल दो डायमेंशंस का है तो दो इक्वेशंस बनेंगी, और अगर सवाल तीन डायमेंशंस का है तो तीन इक्वेशंस बनेंगी। तो एक्स एक्सिस के लिए जो आपकी इक्वेशन होगी वो होगी एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। इसमें कोई बहुत बड़ी मैंने बात नहीं बताई, जैसे एक जनरलाइज जो इक्वेशन निकाली थी ना, याद है ना, एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू, है ना, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, जैसे वो इक्वेशन निकाली थी, उसमें तो वो जेड वन और जेड टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस थे। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, अब हम बात कर रहे हैं पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, और क्योंकि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बात कर रहे हैं तो यदि एक्स एक्सिस की बात होगी तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। वाई की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू प्लस जितने भी मासेस हैं। ऐसे ही जेड का आप मुझे पता है, आप ऑलरेडी लिख चुके हैं अपनी किताबों में, जेड का होगा एम वन जेड वन प्लस एम टू जेड टू प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू एंड सो ऑन। इसको जब थोड़ा टेक्निकली लिखना चाहते हो तो टेक्निकली लिख लो, उसमें आप ऐसे लिख सकते हो, सिग्मा का साइन लगा सकते हो, सिग्मा आई गोइंग फ्रॉम वन टू एन एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय अ कैपिटल एम विच विल डिनोट द टोटल मास ऑफ द पार्टिकल्स। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर वाई एंड ऑफ कोर्स फॉर जेड एज वेल। बट द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई शुड वी डिफाइन सेंटर ऑफ मास को प्रिसाइसली, क्या जरूरत है सेंटर ऑफ मास को इतना प्रिसाइसली डिफाइन करने की? प्रिसाइसली से मतलब यह है बच्चों कि भाई एक्स एक्सिस को भी डिफाइन कर रहे हो, वाई एक्सिस को भी डिफाइन कर रहे हो, जेड एक्सिस को भी डिफाइन कर रहे हो, भाई क्यों क्यों? आइए उसका जवाब ढूंढते हैं। तुम्हें याद होगा दैट वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड सिमिलरली एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो इफ ए वन एक्स डिनोट्स द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल वन अलोंग द एक्स एक्सिस, then you can write the formula for force as max as m1 a1x plus m2 a2x and so on, where ax is the acceleration of the center of mass along x axis. Similar equations can be written for acceleration along y axis and z axis, and these equations can be combined into a single equation which can be mass into vector A, that is of course a dot product, MA is equal to M1A1 plus M2A2, so on and so forth. So basically, ये जो छोटे छोटे M और A हैं, ये आपकी net force आपको बताएंगे जो particle पे लग रही है, but हमने क्या किया है, सारे axis में जो भी उसकी acceleration के components थे उनको जमा कर लिया है। बस सिर्फ ये याद रखो कि मोशन जब थ्री डायमेंशन में होता है तो तीन एक्सेस होती हैं, तो हमें सबको जमा ही करना पड़ेगा ना, सबको ऐड करके सबको साथ लेके ही आगे जाना पड़ेगा ना। तो इसीलिए कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी लेंगे, वाई एक्सिस भी लेंगे, जेड एक्सिस भी लेंगे और अंत में सबको ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास को हर एक्सिस में निकालना अत्यंत आवश्यक है, बस ये याद रखो फिलहाल के लिए। जब फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पर, वो दो तरह से एक्ट कर सकती है। सम फोर्सेस कैन बी ड्यू टू यू नो सोर्सेज आउटसाइड द बॉडी, दे कैन बी एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक द ग्रेविटी, एंड समटाइम्स देयर कैन बी सम इंटरनल फोर्सेज ऑल्सो विच कैन एक्ट इन साइड अ बॉडी। तो आप सोच रहे होंगे कि अब हम फोर्स की बात क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। रिजिड बॉडीज में, लाइक इन केस ऑफ रिजिड बॉडीज, ये याद रखना कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेस जीरो मानते हैं, रखते हैं, क्योंकि ये जो फोर्सेस होती हैं दे कैंसल आउट इन पेयर्स, ठीक है। और द एक्सेलरेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी आर ड्यू टू द सम ऑफ और रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। ये बात याद रखना कि भाई अगर कोई बॉडी पर फोर्स लग रही है और उस वजह से वो एक्सेलरेट हो रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से है। मतलब समझ लो एक फुटबॉल है जिसको हमने किक किया, तो फुटबॉल में मास है और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो हमारी किक की वजह से है, ठीक है ना। सो सेंटर ऑफ जो मास है, जो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी मूव्स एज दो द एंटायर मास ऑफ द बॉडी वर लोकेटेड एट दैट पॉइंट एंड इट वॉज एक्टेड अपॉन बाय द सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। ये बहुत खास बात है सेंटर ऑफ मास की। वो एक ऐसा पॉइंट है जहां उस पूरी बॉडी का एंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है और सारी फोर्सेज अगर उस पॉइंट पे एक्ट कर जाए तो बस हमें वैसा ही मोशन मिल जाएगा जो हम डिजायर कर रहे हैं। Note that the simplification introduced in the derivation by defining center of mass, because you know that every body, अगर मैं फुटबॉल की भी बात कर रही हूँ या मैं एक पेबल की भी बात कर रही हूँ, millions of particles हैं। किस किस पार्टिकल की acceleration और कहाँ कहाँ किस किस डायरेक्शन में उसकी एक्सेलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो इसीलिए सबसे इजी तरीका है, एक पॉइंट ढूंढ लो उस बॉडी में जो कहीं किसी किसी बॉडी में सेंटर पे होगा और किसी में सेंटर पे नहीं भी होगा, जहां पर हम मान रहे हैं कि सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है और अगर फोर्स लगे तो हमें नेसेसरी एक्शन भी मिल जाए। तो the fact that motion of the center of mass is determined by external forces and internal forces have no role in this, it leads to a very interesting consequence. aur janna chahoge wo kya hai, wo bahut hi ek interesting si cheez hai jo main aapse bhi discuss karne wali hu. main ye assume kar rahi hu ki aap log projectile motion ke bare mein jante hain, wo isse pehle aap padh chuke hain. to ek parabolic path imagine karo, ठीक है। और मान लो कि एक जो प्रोजेक्टाइल है वो एक बॉम्ब है जो मिड एयर में एक्सप्लोड हो गया, ठीक है, एंड इट इज ब्रेकिंग इनटू यू नो सेवरल पार्ट, सेवरल फ्रैगमेंट। तो ये एक्सप्लोजन किस वजह से हुआ भाई? एक्सप्लोजन तो हुआ अंदर की उसकी इंटरनल फोर्सेस की वजह से, है ना। लेकिन जो एक्सटर्नल फोर्स है, और कौन सी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लग रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उस बॉम्ब पर, वहां जो भी वो पार्टिकल है, वो तो चेंज नहीं हो रही ना। इंटरनल फोर्सेस की वजह से वो बॉम्ब बीच रास्ते में फट गया, कोई बात नहीं, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो चेंज नहीं हुई ना। सो रिमेम्बर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल कंटिन्यूज टू बी द same parabola on which the bomb would have moved if it had not exploded. वाह, क्या मजेदार example है। अगर वो bomb नहीं फटा होता तब भी वो एक parabolic path लेता, but क्योंकि बीच रास्ते में ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, but center of mass intact रहा, force of gravity intact रहा, तो उसने same motion अपना पूरा किया। तो center of mass की जो इम्पॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। द फ्रैगमेंट्स में फ्लाई इन ऑल द डायरेक्शंस ऑन डिफरेंट पैराबोलिक पाथ, बट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेरियस फ्रैगमेंट्स विल लाई ऑन द ओरिजिनल पैराबोला। अभी कुछ कुछ हमें सेंटर ऑफ मास रिजिड बॉडीज की बातें समझ में आ रही हैं, एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर एंजॉयिंग दिस सेशन। इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों कि फिजिक्स में, साइंस में न्यूमेरिकल्स का, मैथमेटिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हम कभी कभी लेजी हो जाते हैं, हमें लगता है कि थ्योरी पढ़ ली, डेरिवेशन पढ़ ली, बात समझ में आ गई तो न्यूमेरिकल छोड़ दें तो भी चलेगा। चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट फिजिक्स इज लेम विदाउट मैथमेटिक्स। यदि हम मैथमेटिकली न्यूमेरिकल्स साथ साथ सॉल्व नहीं करेंगे तो फिजिक्स कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी, ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ कि एग्जाम्पल 7.2 जो कहता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगी, और इस सेशन के बाद मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग, जो बच्चे ये सेशन सुन रहे हैं वो ये सवाल जरूर सॉल्व करेंगे। तो चार मासेस हैं, देयर आर फोर मासेस, ठीक है, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, एंड दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 meter। अब मुझसे आप ये भी बोल सकते हो कि मैम मेरे पास तो किताब नहीं है, मुझे तो मालूम नहीं आप क्या डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो भाई आप कोई एक स्क्वायर बना लो, एक कॉर्नर पे 1 kg है, एक कॉर्नर पे 2 kg है, एक कॉर्नर पे 3 kg है, एक कॉर्नर पे 4 kg है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि मैडम किस कॉर्नर पे कौन सा केजी आएगा, तो वो भी आप पर निर्भर करता है, आप किस कॉर्नर पे कौन सा मास रखना चाहते हैं। भाई आपका स्क्वायर है, आप कुछ भी मास ले लीजिए, बस डिस्टेंस जो है उनका 1 meter है, आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लोकेट करने हैं। समय लूंगी आपको ये समझाने में, बट यदि आपको ये समझ आ गया तब आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। इफ यू आर एनकाउंटर्ड विद अ क्वेश्चन लाइक दिस, always remember that you have to create a coordinate system in 2 dimensions, like for in this case it's a square, it's not a cube or a cuboid, so I just take a, it's a square, so you take x axis and y axis and make this square, you know, two sides of the square coincide with the 2 axes, which means jo square aapne banaya hai x axis ek side ke sath coincide karni chahiye aur y axis ek side ke sath कोइंसाइड करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक्स वाई एक्सिस बिल्कुल कोइंसाइड कर रही है स्क्वायर के साथ, तो ये तो तुम अभी तक, अगर तुम साथ साथ सॉल्व कर रहे हो तो ये तुम सब समझ चुके हो कि भाई एक पॉइंट जो जीरो है वहां पर कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो जीरो है ना, जीरो जीरो ही तो होंगे, कहां से शुरू होती है एक्सिस, जीरो जीरो से। तो भाई स्क्वायर में जहां पर मान लो तुमने M1 लिखा है, जो तुमने लिखा है वैसे मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा स्क्वायर है, बट मैंने मान लो M1 को 0, 0 पे रख दिया। आगे बढ़ते हैं, मान लो M2 मास जो है उसके अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो होंगे 1, 0, 1, 0, क्यों, क्योंकि एक्स होगा 1 meter की साइड है ना स्क्वायर की, और वाई एक्सिस तो होगा 0, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1, 0। अब आ जाओ तीसरे मास पे, जो ऐसा लग रहा है बेचारा हवा में लटका हुआ ये मास। अब ये जो मास है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बहुत मजेदार, 1, 1, वाई 1, 1, बिकॉज एक्स भी यहाँ पर हमें 1 meter डिस्टेंस दिखा रहा है, वाई भी हमें यहाँ पर 1 meter डिस्टेंस दिखा रहा है, तो M3 के भी कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे 1, 1। आ जाओ M4 पे, M4 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आप देखो ये जो M4 जो पॉइंट है ये y एक्सिस पर ही है, तो इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है और y का कोऑर्डिनेट यहाँ 1 है, तो आपको बेटा 4 कोऑर्डिनेट बच्चों मिल गए, और वो 4 कोऑर्डिनेट हैं 0, 0, 1, 0, 1, 1 एंड 0, 1। बस अब तो आसान है, अगर ये समझ में आ गया तो अब आपको इक्वेशन लगानी है सेंटर ऑफ मास की। क्या समझा चुकी हूँ मैं आपको, सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन निकालने के लिए आपको हर हर एक्सिस पर एक इक्वेशन निकालनी होगी। तो एक्स एक्सिस की जब बात करोगे तो क्या आएगा, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 प्लस M4 x4 divided by M1 plus M2 plus M3 plus M4 and you will calculate, get your answer. Similarly, for Y, you will have M1 Y1 plus M2 Y2 plus M3 Y3 plus M4 Y4 divided by M1 plus M2 plus M3 प्लस एम फोर और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे आपके पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, उसे ब्रैकेट में लिखिए और वो है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब जब आप ये सॉल्व करोगे आपको ये पता चलेगा कि भाई इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है ये तो सेंटर में है ही नहीं, ये तो कहीं कोने में पड़ा है। ऐसा क्यों है? सोचो, एक स्क्वायर था, स्क्वायर पर चारों मासेस डिस्ट्रीब्यूटेड थे कॉर्नर्स पे, सेंटर ऑफ मास तो सेंटर में ही होना चाहिए ना, साइड में क्यों चला गया? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गेस्ड इट एंड गेस्ड इट राइट दैट बिकॉज द मासेस आर डिफरेंट, सेम मास थोड़ी है, मास तो अलग है। तो क्या हमारा सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की तरफ टिल्ट कर रहा है? जब तुम इसका जवाब निकाल लोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि सेंटर ऑफ मास जिस तरफ ज्यादा भार है उस तरफ टिल्ट हो रहा है या उस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। सो आई एम श्योर चिल्ड्रन नाउ यू गॉट अ रफ आइडिया, इन फैक्ट अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एंड व्हाट इज अ रिजिड बॉडी। इससे पहले की थोड़ी सी डिस्कशन और बढ़े, हमारे पास 5-10 मिनट और हैं, मैं एक क्विक रिविजन चाहूंगी तुम लोगों के साथ। ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन की बात की, रिजिड बॉडी अ बॉडी इन विच द पार्टिकल्स आर हैविंग द डिस्टेंस रिमेन्स कॉन्स्टेंट आर कॉल्ड रिजिड बॉडीज। टू टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ कोर्स, रोटेशनल मोशन में मोशन ऑफ द पार्टिकल्स अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसके बाद जब हम किसी भी रिजिड बॉडी की बात करते हैं दो तरह की फोर्सेज लग सकती हैं एक बॉडी के अंदर, इंटरनल फोर्सेज एक्सटर्नल फोर्सेज। अभी इंटरनल फोर्सेस से अंदर का डिस्टेंस ना बदले अभी फिलहाल, तो जब हम बात करते हैं मोशन की तो जब हम सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेते हैं, और सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है एक रिजिड बॉडी में जहां पर वी अज्यूम दैट द एंटायर मास ऑफ द बॉडी सीम्स टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड यू कैन अप्लाई the force at center of mass to get the desired result as you would be putting individual forces on individual particles. So in a nutshell, we have understood what is center of mass. Center of mass jab hum nikalenge, jab hum numerical solve karenge, yaad rakhenge ki hame har axis ke liye baat karni hogi. Yadi 3-dimensional question hai to x, y aur z axis ki baat hogi, yadi 2-dimensional question hai तो दो एक्सिस की बात की जाएगी। नाउ हर सवाल इतना आसान नहीं हो सकता जहां पे आपको एक स्क्वायर दे दिया जाए। बहुत सारी बॉडीज जो होती हैं दे कैन बी एक्सटेंडेड बॉडीज ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड यू नो दे माइट नॉट हैव द सेम मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एनीवे, बट देर आर सर्टन बॉडीज विच हैव सम स्पेसिफिक शेप। For that shape, you can find out the position of center of mass. Like for example, if there is a triangle, a triangular plate, the point of intersection of all the three medians will give us the center of mass. If there is a circular plate or if there's a regular polygon, how will you locate the center of mass? By joining the points. If it is a, it will basically the geometrical center of the figure. If it is a cylinder or a sphere, again the center of that figure will give me the center of mass. If it's a pyramid and a cone, so the line joining the vertex with the center of the base and basically at 1/4 of the height of the measured from the base will give us the center of mass. And so basically do cheezein jo yaad rakhni hai hame. In case of a ring, the center of mass can be outside the ring. When two bodies revolve around each other, they actually revolve around their common center of mass. इस बात को थोड़ा सा याद रख लो कि अगर कोई ऐसा सिस्टम है जैसे अर्थ सन का सिस्टम है तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट्स कॉमन सेंटर ऑफ मास. बट सिंस मास ऑफ सन इज वेरी लार्ज एक्चुअली इन कंपेयर्ड टू द मास ऑफ अर्थ, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ द सन. ये बात मैं पहले भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस की कि यदि दो मासेस हैं और एक मास हैवियर है एज कम्पेयर टू दूसरा मास, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो हैवियर मास की तरफ पाया जाएगा. अब अगर सन और अर्थ की बात करते हैं, सन हैवी है अर्थ से, तो जो हमारी सन और अर्थ का जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डेफिनेटली सन के पास है. तो देखते हैं फटाफट से, अगर तुम्हारे पास किताब है तो एक ग्रिड दी हुई है फिगर 7.5 में. यहाँ पर हम पार्टिकल्स, बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाए जा रहे हैं और उनके मासेस हमें दिए हुए हैं. हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं सेंटर ऑफ मास के. तो बच्चों, इससे पहले कि ये सेशन मैं खत्म करूं, कोई भी एक ऐसा, और अगर जिनके पास किताब नहीं है उनके लिए भी, मान लो तुम्हारे पास एक ग्राफ पेपर है जिसमें सेंटर में एक्स और वाई एक्सिस तुमने बनाई हुई है और रैंडमली तुमने 6 पॉइंट्स ले लिए, कोई भी रैंडमली 6 पॉइंट्स ले लो और कहीं पर भी ले लो, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना बहुत आसान है. कैसे? तुम्हें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स पता है, मासेस तुम अपनी मर्जी से ले लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो. फॉर्मूला तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, x के लिए फॉर्मूला लगाओगे, y के लिए फॉर्मूला लगाओगे और सेंटर ऑफ मास निकाल लोगे. फटाफट से रिपीट कर रही हूँ, एक ग्राफ पेपर ले लो, x और y सेंटर में एक्सिस डाल लो, जहां मर्जी 6 पॉइंट्स ले लो, ठीक है, और उन 6 पॉइंट्स को मासेस दे दो 1, 2, 3, 4, 5 और 6. जहां पर भी पॉइंट्स लोगे वहां पर कोऑर्डिनेट्स उसी हिसाब से आएंगे. और अपने सवाल में क्या तुम सेंटर ऑफ मास खोज सकते हो? मुझे पक्का विश्वास है दैट यू ऑल कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर अ क्वेश्चन लाइक दैट. एंड आई थिंक दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन टुडे. आई होप दैट यू ऑल हैव फॉलोड व्हाट वी डिस्कस्ड अबाउट रिजिड बॉडीज एंड सेंटर ऑफ मास. कीप प्रैक्टिसिंग. All the best. Jai Hind.